जैसे सूर्य का रथ दक्षिणायन से आज उत्तरायण को चला, हमारे नीचे की चित्त वृत्तियां आज बदल कर हम ऊर्ध्वगामी करें। आज हम ये संकल्प करें कि हमारे जीवन का रथ उत्तर के तरफ चले। हम उम्दा विचार करेंगे, भय और चिंता के विचारों को आत्म विचार से हटा देंगे और संतोष और असंतोष के विचारों को चित्त का खेल समझेंगे। तो तुम्हारे जीवन की संक्रांति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि दोबारा जन्म न मिले। बस मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से डरने के कारण कोई बच नहीं गया, लेकिन दोबारा जन्म ही नहीं हो तो फिर दोबारा मौत ही नहीं आएगी, ऐसा प्रयास करना चाहिए। महाराज आज उत्तरायण है, उत्तरायण माना खगोल शास्त्रियों ने विज्ञानियों ने सूर्य की रश्मियों का अध्ययन करते हुए सूर्य नारायण के लिए बारह भाग पढ़ दिए। हर महीने संक्रांति होती है, लेकिन कुदरती पर्वों में प्राकृतिक पर्वों में ये उत्तरायण महत्वपूर्ण पर्व है। आज से सूर्य मकर संक्रांति में प्रविष्ट होता है, इसीलिए आज के दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। जीवन में क्रांति के ढोल तो बहुत लोग पीटते हैं और क्रांति बहुत लोग कर भी लेते हैं, लेकिन उस क्रांति के बाद भी उनका जन्म मृत्यु तो चालू ही रह जाता है। जय जय, उस क्रांतियों के बाद गर्भवास तो चालू ही रह जाता है। क्रांति कर दी, रूप रिवाज बदल दिए, ये क्रांति लाए वो क्रांति लाए, अंग्रेजों को भगाया, हूणों को भगाया, उनको भगाया, उनको लाया और उनको हटाया, उनको लाया, ये क्रांतियां तो कर ली। जय जय, बैठे हैं क्रांतियां के प्यारे, क्रांति करने सुनने वाले सब बैठे हैं, ये क्रांतियां तो हो गई, लेकिन सम्यक प्रकार की क्रांति जो है उसे मकर संक्रांति का संकेत देता है। सम्यक प्रकार की क्रांति, अगर मन अथवा चित्त कल्पित क्रांति होगी तो उसमें घृणा का गंध होगी, उसमें ईर्ष्या होगी, उसमें भय होगा, उसमें चिंता होगी, और सफल हो गए तो अहंकार होगा। लेकिन सम्यक प्रकार की क्रांति हुई तो महाराज कोई अहंकार नहीं, संतोष का भी अहंकार नहीं। यारो हमें न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जस्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम मन्यते यदाह, जिस वक्त अपने अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व तत्व को समझता है, अपने उस तत्व को मैं मानता है, तब उसके जीवन की सम्यक प्रकार की क्रांति हो जाती है, संक्रांति होती है। तो खैर, जिनकी संक्रांति हो गई है उन बुद्ध पुरुषों को, ज्ञानवानों को, आत्मवेताओं को तो हम हृदय से प्यार करते हैं, लेकिन आज ये संकल्प करें कि ये तुच्छ जीवन में इस घाणी के कोलू के बैल की नाई जीवन बिता बिता कर इस जीवन में न मरे। जैसे सूर्य का रथ दक्षिणायन से आज उत्तरायण को चला, हमारे नीचे की चित्त वृत्तियां आज बदल कर हम ऊर्ध्वगामी करें। आज हम ये संकल्प करें कि हमारे जीवन का रथ उत्तर के तरफ चले। हम उम्दा विचार करेंगे, भय और चिंता के विचारों को आत्म विचार से हटा देंगे और संतोष और असंतोष के विचारों को चित्त का खेल समझेंगे। सफलता और असफलता के भावों को स्वप्न समझेंगे। उपलब्धि और अनुपलब्धि ये संसार का स्वप्न प्रति स्वप्न है। जिसे तुम सफलताएं समझते हो, उपलब्धियां समझते हो और क्रांतियां समझते हो, ये एक संसार का विकट विचित्र भयानक और आश्चर्यकारक स्वप्न से स्वप्नांतर है। दुकान हो गया, ये हो गया, छोकरा हो गया, छोकरे का मुंडन हो गया, आहा, लेकिन ये एक संसार भ्रम के रूपांतर है। आपकी जो जो आहा है, हु है, वो महापुरुषों की नजर से, श्री कृष्ण की नजर से, श्री रामचंद्र जी की नजर से, ये केवल उनकी नजरों से केवल बाल चेष्टाएं हैं। जैसे नन्हे मुन्ने हम लोग थे और चॉकलेट से रिझ जाते थे, चवन्नी से रिझ जाते थे, अच्छी एक सुहावनी चड्डी को सिला देने का आश्वासन देता था तो हम रिझ जाते थे। तुम रिझे या न रिझे लेकिन हम तो रिझे थे भैया। भैया जब अपना कुछ भाई साहब कुछ बोलते चालते थे फिर अच्छा नहीं लगता था तो भाई साहब हाथ घुमाते के चलो फर्स्ट क्लास चड्डी सिला के देता हूँ कि अच्छा भाई चलो। तो उस समय समझते कि हाय संतोष, लेकिन अभी समझते कि हाय कितनी बेवकूफी थी। तो जैसे उस समय की बेवकूफी लगती थी, बचपन की हम लोगों की मान्यताएं बेवकूफी लगती थी, ऐसे जब तक अपने आत्मा का बोध नहीं हुआ तब तक ये भी एक बचपन ही तो है और क्या है। श्री राम। तो कृपानाथ अपने पर कृपा करे, आपके जीवन के रथ को सम्यक प्रकार से संक्रांति कीजिए। क्रांति नहीं, क्रांति में तो लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, हिंसा होती है, भय होता है, सफल हो गए तो अहंकार होता है, लेकिन संक्रांति में सफलता का अहंकार नहीं होता है, विफलता का विषाद नहीं होता है, हिंसा को स्थान नहीं है, भय की गुंजाइश नहीं है, ये सम्यक संक्रांति। पौराणिक ढंग से कहा जाए कि इस उत्सव को भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न विभिन्न ढंग से मनाते हैं। महाराष्ट्र के तरफ घड़े को सजाकर पांच घड़ों को और उसमें तिल लड्डू और चीज वस्तुएं हल्दी के गांठिए ये वो डालकर एक दूसरे को लड़की को दिया जाता है, नई दुल्हन को दिया जाता है, ये अब सब सामाजिक कर्मकांड के रिवाज हैं। लोग तिल देते हैं, तिल में स्निग्धता है, चिकास है और गुड़ में मिठास है। तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मन में स्निग्धता हो, रुखापन न हो, लेकिन वो मिठास भी तुम्हारी ऐसी हो कि एक एक तिल को जैसे गुड़ या शक्कर, एक एक तिल को पक्का एक लड्डू बनाकर एक में जोड़ देती है, अनेकों को एक में जोड़ देती है, ऐसे ही तुम्हारी अनेक प्रकार की स्निग्ध जो वृत्तियां हैं उस स्निग्ध वृत्तियों में आत्मज्ञान का परहित परायण का मिठास मिला दो तो एक तिल तो हवा की फूंक से उड़ जाएगा, लेकिन लड्डू जब फेंको तो जहां मारो वहां ठीक निशाना काम करता है। ऐसे ही तुम्हारी वृत्तियों को उस गुड़ रूपी रस से भरकर फिर तुम जो भी काम करो संसार में वहां तुम्हारी सफलता होती। जयराम जी की कह दो ना। इन दिनों में पतंग चढ़ाए जाते हैं। पतंग का प्रारंभ कहां से हुआ इसका खोजना जरा मुश्किल हो रहा है विचारकों को, लेकिन अनुमान कर रहे हैं कि पतंग चीन से चले होंगे, जैसे फटाकड़ों की शुरुआत चीन से हुई थी। पतंग चीन से चले फिर जापान होकर इंडिया में पहुंचे और आकाश में पतंग उड़ते हैं। कोई लाल पतंग है तो गुलाबी है, कोई सफेद है, कोई घैसिया है, भिन्न भिन्न प्रकार के पतंग उड़ते हैं। है क्या एक पतला सा कागज, बांस की सली और इस पतंग से जहाजों का आविष्कार हुआ था। इन पतंगों के उपयोग से फौजियों ने दारूखाना एक दूसरे के जगह पर फेंकने का उपयोग भी किया था। इन पतंगों से शत्रुओं के वहां के संकेत लेने देने का काम भी किया था। पतंग तो बिल्कुल एक साधारण कागज है, लेकिन उसमें सम्यक समझ आ जाती है, सम्यक व्यवस्था हो जाती है, तो धरती और आकाश के दोनों के बीच की एक सुहावनी रंगीनी दिशा भी इन दिनों में वो पतंग हमें दिखाते हैं। और पतंग तब तक आकाश से बातें करते, हवाओं में लहराते हैं और हजारों के नजरों में प्रिय दिखते हैं, तब तक दिखते हैं जब तक उनका दोरे के साथ संबंध है, और दोरा तब तक सीधा है जब तक सूत्रधार के हाथ में है। जय श्री कृष्ण। वो धागा तब तक सीधा दिखता है, सुहावना दिखता है और कंट्रोल करता हुआ दिखता है जब तक सूत्रधार के हाथ में है। सूत्रधार के हाथ से धागा छूट जाए तो फिर वो पतंग कहीं तो पेड़ पे बुरी तरह, कहीं तो संडास पे, कहीं तो थंभे लाइट के थंभों में लटकते हैं बुरी तरह। और ये लाल पीले गुलाबी जो पतंग दिखते हैं तब तक दिखते हैं, समाज में भी कोई सत्ता की लाली से दिखता है तो कोई धन की गुलाबी से दिखता है तो कोई सौंदर्यता के सौंदर्य से चमकता है, लेकिन ये तब तक चमकते हैं जब तक सूत्रधार से उनकी सत्ता आ रही है। सूत्रधार से डिस्कनेक्ट होते ही पतंग राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम हो जाते हैं। તો આ તમારું જીવનનું પતંગ જેનાથી ચગી રહ્યું છે તે જીવનદાતાને ઓળખો, અથવા તે જીવનદાતામાં તમારા જીવનની ડોર હશે તો જ તમારા જીવનનું પતંગ વ્યવસ્થિત ચગશે. પતંગ ચગને મેં દૂસરી ભી વાત હે, પતંગ ચગતા હૈ ઊંચે ઉડિયાન લેતા હૈ, હજારોં કી નજરોં કો આમંત્રિત કરતા હૈ, લેકિન સાથ સાથ મેં એક દૂસરે કી કાટા કૂટી ભી કરતે, પેચ લડાતે. ऐसे आदमी के चित्त में ऊंचे उड़ने की आकांक्षाएं भी होती है, महत्व आकांक्षाएं भी होती है, और हर इंसान चाहता है मैं अपने जगत में अद्वितीय हूं, सबसे ऊंचा हूं. जो पतंग ऊंचा से ऊंचा जाना चाहता है, ऐसा ही हमारा ये देह रूपी मन रूपी पतंग ऊंचा उड़ना चाहता है, लेकिन साथ साथ में ईर्ष्या और घृणा के पेच की भी वृत्ति है. अथड़ा के लड़ा के एक दूसरे को काट कूट के स्वयं भी कटकर जाकर जाकर जंगलों में गिरते और पानियों में और तालाबों में गटरों में जाकर गिरते हैं. तो उर्ध्वगमन की भी योग्यता है और साथ साथ में ईर्ष्या के कारण अधोगमन की भी, दुर्भाग्य की उसमें दिग्दर्शन हमें होता है. ऐसे हमारे मन में ऊंचा उठने की भी भावना होती है और संघर्ष लड़ाई ईर्ष्या की भी भावना होती है. ईर्ष्या क्यों होती है, संघर्ष लड़ाई क्यों होता है? रामायण में दोहराता है, उमा संत की यही भलाई, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत तेहूं करत भलाई. संत का स्वभाव, उमा संत की यही बड़ाई,
उमा संत की यही बड़ाई,
मंद करत तेहीं करत भलाई,
मंद करत तेहीं करत भलाई.
जो मंद करता है उसकी भी भलाई करते हैं, ये संत के हृदय का गहरा स्वभाव होता है. लेकिन आज हमारे लोगों के चित्त का स्वभाव बदल गया. घर में बड़ा आदमी छोटा कुछ कर लेता था तो थोड़ा सह लेते थे, और छोटा कुछ कर लेता था तो बड़ा सह लेते थे, और बड़ा कुछ कर लेता था तो छोटा सह लेते थे, क्योंकि घरों में भी हमारे चित्त में संतों के वचनों के संस्कार होते थे. लेकिन आज इस चौपाई को, इन दोहों को अलग ढंग से हम लोग समझते सुनते हैं. उमा कली की यही बड़ाई, उमा कली की यही बड़ाई, ये तुलसीदास जी का दोहा नहीं है, बनाया हुआ है. उमा कली की यही बड़ाई,
उमा कली की यही बड़ाई,
खा वही रोटी करही लड़ाई,
खा
उमा कली की यही बड़ाई, खावही रोटी करही लड़ाई. कलयुग में कलह बढ़ गया, ईर्ष्या बढ़ी बढ़ गई, असंतोष बढ़ गया, उद्वेग बढ़ गया, और उस असंतोष और उद्वेग में थोड़ा सा शत्रु का दमन हो जाता है अथवा थोड़ा सा असंतोष कम हो जाता है तो हम समझते कि हम संतुष्ट हैं. जैसे बुद्ध हलवाई ने जोड़ा पहरा था, जूता पहरा था, और गया बाबा जी के पास और खूब दुखड़ा रोया कि साईं हमारे को तो बस ये हो गया, दुकान में घाटा पड़ गया, म्युनिसिपैलिटी वाले लोग मिठाई के सैंपल ले गए, केस चल रहा है, उधर दंड भरना है, धंधा बंद कर दिया, नौकरी मिलती नहीं, पत्नी कहना नहीं मानते, बेटा नापास हो गया है, और लड़की जमाई घर छोड़ के गया, इससे बढ़कर और दुख क्या हो सकता है. चार बेटों की माँ लड़की जब घर आ गई हो तो ससुरा का क्या हाल हो, बाप का क्या, महाराज में बहुत दुखी, और तो क्या, लेकिन मुझे भागे को तो सब लोग काटने को आते हैं, कुटुंबी तो काटते हैं, ऑफिसर लोगों को भी हमने मन समझाया तो उन्होंने भी डांटा, लेकिन महाराज अब जूता भी मेरे को काटता है. महाराज होंगे कोई सिंह होंगे कुछ परहितरत, महाराज ने कहा भैया तेरे को जूता काटता है ना, तो ये जूता तू ले जा, भले मेरा जूता तू पहन ले, जरा बड़ा है, चप्पल पहन के जा, ये जूता भी मत पैर. बोले महाराज ये आज्ञा मत करो. क्यों? कि महाराज बहुत दुखी हूँ, ये जूता जब पहनता हूँ ना तो फोड़ा निकलता है, फोड़े का इतना दुख होता है कि और सब दुख भूल जाता हूँ, और फिर जब ये उतारता हूँ तो लगता है कि हाश शांति मिली, महाराज मुझे शांति का साधन यही जूता है अभी. जय जय. तो क्या आप लोगों का भी ऐसा ही कोई जूता तो नहीं है शांति का साधन? थोड़ा सा प्याली पी, हाश, थोड़ा सा किसी ने तालियां बजा दी, हाश, थोड़ा सा पत्नी ने चाय पिला दी के हाश, थोड़ा सा पति ने एक साड़ी ला के दी के हाश, थोड़ा सा अंगूठी बना दी के हाश, थोड़ा सा रिबिन का एक सेट लाके धर दिया कि हाश ये तुम्हारा हाश ऐसा ही है कि और कुछ है। हाँ तो पढ़ो वरी आओ शू करो ईमानदारी सीखो आते हूँ। ओम ओम। लेकिन इन चीजों को जो लोग पाकर संतुष्ट अपने को मानते हैं या भागशाली मानते हैं, शिवजी की नजर से तुलसीदास की नजर से वे लोग अभागे गाने गए। उमा तिन के बड़े अभाग जे नर हरि तज विषय भजहि। उनके बड़े दुर्भाग्य हैं जो हरि का रस छोड़कर आत्मज्ञान का रस छोड़कर पदार्थों से संतुष्ट हो रहे हैं, विषय वासना से संतुष्ट हो रहे हैं, वे बड़े अभागे हैं। उमा तिन के बड़े अभाग जे नर हरि तजी विषय भजे। महान सिकंदर, विनोबा जी कहते ये बेवकूफों का नारा है, महान सिकंदर, महान हिटलर, अरे जो नरसंहार करवा दे, बच्चों के बाप छिनवा ले और नारियों को विधवा का दुख दे दे, और अपमृत्यु जिनकी मौत कर दे और प्रेतों की योनियों में भटका दे और औरों के लिए अशांति सूक्ष्म जगत में कर दे, ऐसे अहंकार को पोषने वाले हिटलर को महान कहते हो? महान सिकंदर, महान हिटलर, ये मूर्खों के नारे। महान हिटलर नहीं, महान सिकंदर नहीं, लेकिन महान तो है महाराज वशिष्ठ मुनि, जो हजारों दिल में शीतलता अभी भी उनके वचनों से आ रही है। महान तो वेद व्यास है, जो उनकी कृति से अभी भी भारत का धर्म विश्व में शांति देने का सामर्थ्य रख रहा है। महान तो शंकराचार्य है, जो दिन रात को और धूप छां को न देखते हुए इधर उधर की यात्रा करते हुए लोगों को अपने आत्म महिमा में जगाया। उन महान पुरुषों को महान कहो कि जिन्होंने दूसरों को मचल मुचल के शोषण करके और नश्वर चीजों के हम्बार भर के आकर सब छोड़कर पश्चाताप करते करते प्रेत योनि में धकेले गए और गर्भों में लटकते रहे, उन लोगों को महान सिकंदर और महान हिटलर कहने वाले लोगों बुद्धि को मेरा खूब खूब धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण। महान नानक थे, महान कबीर थे, महान विवेकानंद थे, महान राम तीर्थ थे, महान बुद्ध थे, महान कबीर थे, महान तुकाराम थे, महान सहजानंद स्वामी थे, महान वल्लभाचार्य थे, महान तोटकाचार्य थे, ये सब महान व्यक्ति थे जिन्होंने तुच्छ तुच्छ उपलब्धियों को अपना जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया, तुच्छ सुखों को अधीन नहीं हुए और दुखों से दबे नहीं, न दुखों से दबे न सुखों में चिपके, दुख और सुख को जीवन की यात्रा का एक नमूना समझकर उनको बहने दिया और दुख सुख को निहारने वाले को ठीक से निहार कर तदाकार हो गए। वे महापुरुष हैं, वे ही वास्तव में महान है। फिर इतिहासकार चाहे उन्हें महान कहे चाहे न कहे, लेकिन हम लोगों के हृदय में तो उन्हीं की महानता पर्याप्त है, हम उन्हीं को महान कहेंगे। तो उत्तरायण तुम्हें महान हिटलर होने के लिए संकेत नहीं कर रहा है, क्रांति करने के लिए उत्तरायण तुम्हें संकेत नहीं कर रहा है, लेकिन संक्रांति करने के लिए, हिंसा से क्रांति नहीं लेकिन प्रेम से सम्यक क्रांति, संक्रांति। और आप ये न समझे कि तलवार के बल से के डंडे के बल से आपकी जीत होती है, नहीं, बिल्कुल झूठी मान्यता है। तलवार या डंडे के बल से सापेक्ष जीत होती है, थोड़ी देर के लिए जीत होती है, लेकिन वो सामने वाला तुम्हारे लिए और घाट घटता है। लेकिन प्रेम की बाढ़ में आप इतने ही तो प्रेम की बाढ़ बह है कि सामने वाले के दूषित विचार भी बदल कर आपके अनुकूल विचार हो जाए तो आपने ठीक से उसको जीत लिया। एक सम्यक क्रांति किए हुए सेठ जी जा रहे थे बोट में बैठकर, बाहर से तो सेठ दिखते थे लेकिन भीतर से वो संत थे। तो कोई कम्युनिस्ट विचारों के लोग मिले कि सेठिया ऐसा है वैसा है वैसा है, तो लेक्चर करने में होशियार थे कि भगवान का नाम लेके सेठ लोगों ने संपत्ति बढ़ा दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया कुछ, महाराज 10-5 लोग सेठ के खिलाफ हो गए और कुछ का कुछ बोलने लगे। देखने भर को वो सेठ थे लेकिन किसी सतगुरु के सत शिष्य थे वे। तो जब उनका गहरा अपमान हो रहा था तो गुरु के वचन याद आ रहे थे कि सबको बीतने दो, आखिर यह भी कब तक, ये सूत्र उसके चित्त में गूंज रहा था, ये इनके अपमान के वचन भी कब तक, जब मान करने वालों के वचन भी अभिवादन के वचन भी पसार हो जाते हैं तो अपमान के वचन कब तक, आखिर यह भी कब तक? यह सूत्र उनके दीवालों पे लिखा था और उसके दिल पर भी लिखा था, आखिर यह सब कब तक? छेवटे क्या सुधी, क्या सुधी? वो अपने आप में संतोष चाहता नहीं था, जो था वही ठहरा था। ठीक समझ थी उसे, उसके जीवन की संक्रांति घटी थी। महाराज उस संत का अनादर, वो तो ज्यों के त्यों थे, संतुष्ट थे अपने आप में जैसे के तैसे थे। आकाशवाणी हुई कि इनका जो बॉस है, मुख्य है, इसको पकड़ के दरिया में डाल दो। उस संत ने कहा कि भगवान इतने कठोर तुम कब से हुए? इन्होंने तो खाली दो शब्द ही बोले और तुम इनको पूरे का पूरा स्वाहा क्यों करते हो? बोले तू कह दे इसको वो नुकसान कर दूं, इसको सबक सिखा दूं। बोले भगवान अगर सबक ही सिखा देना है ने तो इसकी बुद्धि बदल डालो, बस वो काफी हो जाएगा। उसकी बुद्धि बदल दी गई और जो बॉस की बुद्धि बदल गई तो बॉस के पीछे लगने वालों की भी बुद्धि बदल गई और उसी माफी ली और जीवन में, उनके जीवन में भी क्रांति की जगह पर संक्रांति का प्रवेश हुआ। इस संक्रांति को विषम पितामह की कहानी तो याद है कि दक्षिणायन में मृत्यु योगी लोग पसंद नहीं करते हैं। बाणों की छाया पर 51 दिन तक सो रहे थे, 52वां दिन उनके लिए था और बाद में अपने प्राणों का त्याग किया कि फिर दोबारा इस संसार में आना ना पड़े। तो तुम्हारे जीवन की संक्रांति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि दोबारा जन्म न मिले। बस मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से डरने के कारण कोई बच नहीं गया, लेकिन दोबारा जन्म ही नहीं हो तो फिर दोबारा मौत ही नहीं आएगी, ऐसा प्रयास करना चाहिए। पहली बात यह कि प्रसन्न रहना, दूसरी बात है कि भगवान को अपना मान। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के। आप ऐसा नहीं समझो कि भगवान बाबा जी के हैं, नहीं नहीं, भगवान जितने बाबा जी के हैं उतने ही बेटा जी के हैं। अभी तो बेटा जी के कभी कभी ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि बाबा जी तो थोड़ी देर नहीं भी मिलेंगे तो जानते कि तू हमारे से अलग नहीं है, और बेटा जी को तो जल्दी मिलने को तत्पर है। छोटे बच्चे को माँ ज्यादा प्यार कर लेती है क्या? तो आप भगवान को अपना मानिए। भगवान को अपना मानने से जो पुण्य होता है वो पुण्य उपवास करने से नहीं होता है, वो पुण्य यज्ञ करने से नहीं होता है, वो मक्का मदीना जाने से अथवा काशी नहाने से, गंगा नहाने से वो पुण्य नहीं होता है, जितना पुण्य भगवान को अपना मानने से होता है। गंगा तो बाहर नहाते और भगवान मेरे हैं वो अंदर भाव रहता है, जय राम जी की। होम हवन तो बाहर करते और भगवान मेरे ये अंदर रहता है, इसलिए भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। और कभी कभी कमरा बंद करके भगवान का जो भी तुम्हें प्यारा नाम लगे, जो गुरु महाराज ने दिया हो, अथवा चाहे तुम कोई निगुरे भी हो, जय राम जी की। हकीकत में निगुरा आदमी तो ऐसा है बेचारा, जैसे विधवा स्त्री का सिंगार व्यर्थ है ऐसे निगुरे का जीवन व्यर्थ है। कभी कभी भक्ति भाव करने वाले लोग होते हैं और गुरु मंत्र नहीं है, तो जिनको गुरु मंत्र मिलता है, जो सगुरे हैं वो जो आनंद लूटते हैं, वो निगुरे तपस्या करने वालों को भी आनंद नहीं मिलता। निगुरे लोगों को व्रत उपवास और तप करने से वो आनंद और वो साधना की ऊंचाई का अनुभव नहीं होता है जो गुरुओं के प्यारों को हो जाता है। तो गुरुओं के प्यारों का अनुभव है कि गुरु को और भगवान को स्नेह करके उनसे बातचीत करें और वो प्रेरणा देते हैं। तो आपके अंदर में ईश्वर की असीम शक्ति पड़ी है। वट वृक्ष का बीज छोटा दिखता है, अभी हवा का झोंका उसको इधर से उधर भगा देता है, उसी वट वृक्ष के बीज को मौका मिल जाए तो वही बीज जब वृक्ष बनता है तो सैकड़ों पथिकों को आराम करने की योग्यता, आराम कराने की योग्यता उसमें है, सैकड़ों पक्षियों को घोंसला बनाने की योग्यता दे देता है। ऐसे जीवात्मा में बीज रूप से ईश्वर की सब शक्तियां छुपी है, उसको सहयोग मिले तो जितना ऊंचा उठना चाहे, जितना महान होना चाहे वो हो सकता है। तो कबीर जी ने समझाया अपने पुत्र कमाल को कि बेटा राम नाम का मतलब है जो रोम रोम में रम रहा है चैतन्य स्वरूप राम, और उसमें जितना तुम एकाकार होते जाओगे उतना ही तुम्हारी ऐहिक तुच्छ लालसाएं कम होती जाएगी और परमात्मा का रस बढ़ता जाएगा। जितना अंदर का सुख और आराम बढ़ता जाता है, जितनी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती जाती है, उतनी भौतिक चीजें तो अपने आप पाले हुए कुत्ते की नहीं आती है, फिर उसका आप ठीक उपयोग करो अथवा उसको ठुकरा दो आपकी मर्जी की बात है। तो आध्यात्मिक उन्नति के पीछे भौतिक उन्नति तो स्वाभाविक होती है। तो भगवान का भजन करने से बुद्धि तीव्र होती है, मन पवित्र होता है, शरीर भी पवित्र होता है, एकाग्रता से सफलता आती है संकल्प की, चित्त की विश्रांति से सामर्थ्य आता है और प्रेम से हृदय में दिव्यता आती है। तो मेरा खूब भार देने का आग्रह करने का ये उद्देश्य है कि चित्त में दिव्यता आ जाए। आप भगवान को स्नेह करो तो आपके चित्त में दिव्यता आ जाएगी, आप भगवत प्राप्त संतों को स्नेह करो तो आपके चित्त में दिव्यता आ जाएगी, आप पुत्र और परिवार में पड़ोस में स्नेह को जरा मिश्रण कर दो स्नेह का तो आपका व्यवहार भक्ति बन जाएगा, और भक्ति में से स्नेह निकाल दो तो भक्ति नौकरी बन जाती। पुजारी बैठा है कि मंदिर में, पुजारी बैठा है मंदिर में, दर्शन करने वाले की नजर तो भगवान के तरफ है और पुजारी की नजर पॉकेट के तरफ रह जाती, क्योंकि उद्देश्य हमारा अगर भगवान नहीं है तो मंदिर में होते हुए भी हम पैसों में हैं, और उद्देश्य अगर भगवान है तो हम बैंक में होते हुए भी भगवान में हो सकते हैं। जय राम जी की। इसलिए आपके उद्देश्य को पवित्र कर लो कि उद्देश्य अपना है भगवत प्राप्ति का, उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होगा तो आप भोजन बनाएंगे वो भी भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप भोजन खाएंगे वो भी भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप खेड़ करेंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप विलोणा करेंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप बच्चों को स्नान कराएंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप सोएंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप रोएंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप हंसेंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप नाचेंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप जिएंगे तो भी भगवान की भक्ति हो जाएगी और मरेंगे तो भी भगवान की भक्ति हो जाएगी, ऐसा ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूं। कश्मीर के कुछ लोग संत सम्मेलन कर रहे थे तो उसमें भाषण करने वाले लोग आए, तो एक भाषणकर्ता ने कहा कि जब तक दिल पवित्र नहीं हुआ तब तक राम राम करने से क्या फायदा, अपना पहले मन पवित्र करो, दिल पवित्र करो, फिर राम नाम का भजन करो। वो अपना भाषण देके बैठ गया। फिर एक कोई संत का वारा आया, संत ने बोला कि अभी अभी ये युवान भाषण करके चले गए, लेकिन ये बोलते थे कि मन पवित्र नहीं होगा तब तक राम राम करने से क्या फायदा, पहले मन पवित्र करो फिर राम राम करो। तो मैं पूछता हूं कि मन पवित्र कौन सी सोडा खार से होगा, कि लाइबो साबुन से होगा, कि किसी लॉन्ड्री से होगा, कि धोबी के दुकान से मन पवित्र होगा, कि डंडा मारने से मन पवित्र होगा। अरे मन पवित्र नहीं है तो राम राम करो, और मन पवित्र है तो भी राम नाम करो। जैसे जिह्वा में सूखा रोग हो जाता है तो मिश्री फीकी लगती है, लेकिन इलाज यही है कि मिश्री चूसते जाओ, जिह्वा का सूखा रोग मिट जाएगा और मिश्री की भी मिठास आ जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। ऐसे हृदय सूखा है तो भी राम राम ले लो, और सूखापन मिटते ही फिर राम नाम के रस का अनुभव हो जाएगा। जय राम जी की। एक बाबा जी एकांत प्रिय उनके पास लोग गए और लोगों की परीक्षा लेने के लिए बाबा जी ने उठाया डंडा। अरे भगो, क्या तुम्हारे बाबा के नौकर है, रोज रोज सिर खपाने को आ जाते हो, तीन रोटी टुकड़ा कन देते हो और दिन को भी आते हो, शाम को भी आते हो, जाओ हम नहीं बात करते, भाग जाओ। कुटिया से भगा दिया सबको। तो कोई महाराज घर चला गया, कोई खेत में इर्द गिर्द चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा कि बाबा जी टहल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, सत्संगी खिसक खिसक के बैठ गए। बाबा जी ने कहा क्यों आए फिर? बोले महाराज हमने आपसे ही सुना है कि साधक है बेचारा नेवला और संसार है सर्प,
नेवले और सांप की लड़ाई होती ना, नेवले और सांप का युद्ध होता है, तो नेवला चालू युद्ध में खिसक जाता और जंगल की बूटी सूंघने चला जाता है, क्योंकि सांप के डंक से उस पर असर हो जाती है जहर की थोड़ी बहुत, फिर जाकर बूटी सूंघता और ताजा हो जाता, फिर आकर भिड़ता, फिर देखता है डंक लगे और फिर खिसक गया और बूटी सूंघ गया। उसको बूटी तब तक चाहिए जब तक सांप को उसने मारा नहीं। ऐसे ही हम भी हैं नेवले और संसार है सर्प। कभी काम का डंक लगता है तो कभी क्रोध का डंक लगता है, कभी मोह का डंक लगता है तो कभी ईर्ष्या का डंक लगता है, कभी घृणा का डंक लगता है तो कभी ग्लानी का डंक लगता है। बाबा जी, हम लोगों का हृदय डंकों से भर जाता है और तुम्हारे जैसे संतों के कुटिया पे आकर जरा राम नाम की सत्संग की बूटी सूंघ जाते, फिर हम ताजे हो जाते, फिर जाके संसार से भिड़ते हैं, फिर डंक लगते और हम जरा उदास हो जाते हैं महाराज जी, फिर आ जाते और बूटी सूंघते और फिर आगे भिड़ते हैं। ये हम बूटी तब तक सत्संग की बूटी बाबा जी हमको चाहिए जब तक संसार रूपी सर्प को हमने नहीं मार डाला। ये मिथ्या संसार जब तक हमको सच्चा लगता है तब तक हमको सत्संग की बूटी की जरूरत है। ये सत्संग की बूटी इतना प्रभाव रखती है कि संसार में रहते हुए भी संसार का प्रभाव हृदय में न पड़े। ये संसार जो मिथ्या है वो मिथ्या दिखने लगे और आत्मा जो सत्य है वो सत्य की अनुभूति होने लगे, तब तक बाबा जी हमको सत्संग तो बार बार आप हम न सुने तो हमारा कान पकड़ के भी आप सुनाने की कृपा करना गुरु महाराज। चाहे डंडा भी लगाओगे तो संतों का क्रोध भी कल्याण के लिए होता है, प्रेम भी कल्याण के लिए होता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे दे चाहे दुख दे दे, चाहे डंडा दिखा दे चाहे आंख दिखा दे चाहे हलवा दिखा दे, लेकिन बाबा जी सत्संग तो जरूर चाहिए। जय राम जी। अब प्रभु कृपा करहु एही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राती। काम क्रोध लोभ मोह घृणा ईर्षा छोड़कर प्रेम उदारता हरि हित कार्य करें, ये भगवान की बड़ी भक्ति है।